13 दिसंबर शुक्रवार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे।
जो नई व्यापार नीति बनेगी उसमें भारत का हाथ थोड़ा और मजबूत रहेगा और बोरिस जॉनसन ये चाहेंगे कि भारत के साथ अच्छी से अच्छी व्यापारिक डील हो।
असम में राष्ट्रीय नागरिकता बिल का विरोध जारी।
वो सज रहा है कि हम पुलिस लगाएंगे, सीआरपी लगाएंगे, आर्मी लगाएंगे, गोली चलाएंगे। कितना मरेगा भाई, कितना गोली चलाओ, हम लोग गोली खाने के लिए रेडी है।
और विवेचना में बाद दर्शकों की मांग पर छक्का मारने वाले सलीम दुर्रानी की।
बॉल सलीम दुर्रानी को बॉलिंग किया तो उसने सीधा क्रॉस बैट मार के इस 10 में सिक्सर मार दिया उसको।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सूर्यांशी पांडे से। ब्रिटेन में हुए चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पिछले 3 दशकों में यह पहला मौका है जब पार्टी ने संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। सरकार बनाने की अनुमति के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बकिंगम पैलेस में महारानी से मुलाकात की है। उन्होंने फिर दोहराया कि चुनाव अभियान के दौरान किए गए ब्रेग्जिट को अंजाम देने और ब्रिटेन के हितों के प्रतिनिधित्व के वादे को पूरा करेंगे। वहीं लेबर पार्टी की सांसद लीसा नैंडी ने कहा कि उनकी पार्टी मतदाताओं की आवाज सुनने में नाकाम रही।
Over and over again, what we haven't done is listen to what people are saying to us, and that's one of the reasons why I think.
बार बार हमने वो नहीं सुना जो लोग हमसे कहना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से ये भी एक कारण है। हम कहना चाहेंगे कि हमें मालूम है क्या कहाँ गलत हुआ और हम इसे स्वीकारते हैं। इस समय हमें शांत और विनम्र रहकर वो बातें सुननी चाहिए जो लोग लंबे समय से हमसे कहना चाह रहे थे। ये थे लेबर पार्टी के सांसद लीसा नैंडी के शब्द। पूरे पाकिस्तान में वकील हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल में शामिल लोग बुधवार को लाहौर के एक अस्पताल में हंगामा करने वाले दर्जनों वकीलों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अस्पताल के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार और साजो सामान को नुकसान पहुंचा रहे वकीलों की तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला था। इस हंगामे के दौरान 3 मरीजों की मौत भी हो गई थी। अब वकीलों के संगठन गिरफ्तार किए गए वकीलों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इराक में शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता आयतुल्ला अली अल सिस्तानी ने देश में हाल ही में प्रदर्शनों के दौरान हुए हत्याओं और अपहरणों की निंदा की है। अल सिस्तानी ने सरकार से अपील की है कि लोगों के पास मौजूद हथियारों को अपने कब्जे में लें और लड़ाकों के समूह को खत्म करें। इराक में अक्टूबर से ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सिस्तानी के प्रतिनिधि अहम अल सफी ने कहा,
إن هذا الحادث المؤلم وما تكرر خلال الأيام الماضية
प्रदर्शनकारियों की हत्याएं और अन्य घटनाक्रम दर्शाते हैं कि सभी हथियारों का नियंत्रण सरकार के पास रहना चाहिए। धार्मिक संगठन इसी की मांग बार बार करते हैं। हमने जो पहले कहा फिर वही कहना चाहेंगे कि इराकी सुरक्षा बलों को मजबूत, पेशेवर और देश के प्रति वफादार होना चाहिए। उन्हें हर बाहरी खतरे से देश का बचाव करना चाहिए। ये थे इराक के शिया धार्मिक नेता आयतुल्ला अली अल सिस्तानी के प्रतिनिधि के शब्द। जर्मनी की पुलिस का कहना है कि ब्लैंकनबर्ग शहर में एक रिहायशी इलाके में हुए धमाके में एक शख्स की मौत हुई है जबकि 20 लोग घायल हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक यह नहीं कहा जा सकता है कि धमाका कैसे हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतों के शीशे टूट गए। जहां यह धमाका हुआ है वहां दीवारें काली हो गई हैं। घटना के कारणों की जाँच जारी है। नाइजर के राष्ट्रपति ने मंगलवार को एक चरमपंथी हमले में मारे गए 71 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। माली के साथ लगती सीमा पर मौजूद एक सैन्य ठिकाने पर हुए इस हमले को नाइजर की सेना के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। इस हमले के तार इस्लामिक स्टेट समूह के साथ जोड़े जा रहे हैं। पिछले 4 महीनों में हुए इस तरह के हमले में नाइजर, माली और बुर्किना फासो के 230 सैनिकों की जान जा चुकी है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी .com पर भी संदीप सोनी के साथ। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 650 सीटों वाली संसद में पार्टी ने बहुमत के लिए ज़रूरी 326 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के खाते में 364 सीटें आई हैं। दूसरी ओर विपक्षी लेबर पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 203 रह गई है। पार्टी अपनी कई परंपरागत सीटों पर भी चुनाव हार गई है। नतीजों के ऐलान के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कह रहे थे कि उन्हें अब एक नया जनादेश मिला है जिससे वो ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने वाली ब्रेग्जिट डील को लागू करवा सकेंगे और ब्रिटेन को एकजुट भी कर सकेंगे। वहीं विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने नतीजों पर अफसोस जताते हुए इसे लेबर पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक बताया है। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के लिहाज से कंजर्वेटिव पार्टी की जीत के क्या मायने हैं? क्या ऐसा भी हुआ कि कश्मीर मुद्दे पर लेबर पार्टी के रुख से भारतीय मूल के वोटर लेबर पार्टी से दूर हुए? समझने के लिए बीबीसी संवाददाता वात्सल राय ने लंदन में मौजूद बीबीसी हिंदी रेडियो के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की हार की वजह आखिर क्या रही।
सबसे बड़ी मुझे लगता है वजह है कि लेबर पार्टी के जो नेता हैं जेरेमी कॉर्बिन, वो अलोकप्रिय थे। उनकी नीतियां बिल्कुल सही हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या विदेश नीति को लेकर के जिस तरह की बातें करते थे, कुछ थोड़ा बहुत उनको बढ़त मिली थी जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसके दौरान, लेकिन ब्रेक्सिट को लेकर के उनकी जो ढुलमुल नीति रही उसने उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि वो एंटी ज्यू हैं और उन्होंने जो ज्यूइश लोगों के खिलाफ उनकी पार्टी में छींटाकशी हो रही थी उसके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए, इसका उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और तीसरे सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब उनसे ये पूछा गया कि ब्रेक्सिट पे आपकी पार्टी की राय क्या है, आप क्या करेंगे, तो वो इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाए, न वो इधर के थे न वो उधर के थे।
लेबर पार्टी ने चुनाव में कश्मीर को भी मुद्दा बनाया, क्या ऐसा लगता है कि इस मुद्दे की वजह से भारतीय मूल के जो वोटर लेबर पार्टी के समर्थक माने जाते थे वो उनसे कुछ हद तक दूर हुए?
देखिए, भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो शायद ये सुनना चाहेंगे कि उसका बहुत बड़ा असर पड़ा, और थोड़ा बहुत असर पड़ा भी होगा, खासकर यहाँ जो गुजराती समाज है, गुजराती समाज के वोट जो लेबर पार्टी को जाते थे हो सकता है वो कंजर्वेटिव पार्टी को गए हों। लेकिन अगर आप ज्यादातर जो भारतीय मूल के लोग हैं प्रवासी हैं उनकी जनसंख्या कहीं आबादी कहीं है तो वो शहरों में है, तो शहरों के अगर आप रिजल्ट उठा के देखें, आप ब्रेडफर्ड का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, आप लेस्टर का, लंदन का, बर्मिंगम का, तो वहां लेबर पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है।
क्या लगता है कि इन नतीजों के बाद भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में कोई बदलाव आएगा?
देखिए, जहां तक विदेश नीति की बात है मुझे नहीं लगता उसमें कोई खास असर पड़ेगा। विदेश नीति में भारत और ब्रिटेन के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं, एक दो बातों को लेकर तल्खी है, सारी समस्या व्यापारिक रिश्तों को लेकर के है। जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है उसने कुछ ऐसे कदम उठाए थे, जैसे अभी हाल में 2 साल जो भारत के छात्र यहाँ आते हैं उनको रहने की इजाजत दी गई और वो 2 साल और रहकर कुछ काम कर सकते हैं, इससे थोड़ा फायदा हुआ है। कुछ मुझे लगता है कि व्यापार को लेकर के अब जो नई व्यापार नीति बनेगी तो उसमें भारत का हाथ थोड़ा और मजबूत रहेगा, और बोरिस जॉनसन ये चाहेंगे कि भारत के साथ अच्छी से अच्छी व्यापारिक डील हो, तो उससे भारत को फायदा है, थोड़े रिश्ते हो सकता और घनिष्ठ हो जाएं। एक दो चीजें और भी हैं, जैसे मॉरिशस को लेकर के भारत और ब्रिटेन के बीच थोड़ा मनमुटाव है। मॉरिशस में ब्रिटेन मॉरिशस के जो द्वीप समूह है उनको देने में आनाकानी कर रहा है, हो सकता है उस पर भी दबाव बढ़े। और अमृतसर में जो बोरिस जॉनसन जाकर के माफी मांगना चाहते थे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में, हो सकता है उस पर एक आध कदम वो आगे बढ़ाएं तो उससे हो सकता है व्यापारिक रिश्तों में और जो कूटनीतिक रिश्तों में और थोड़ी सी मधुरता है। तो कुल मिलाकर के जो रिश्ते होंगे वो बेहतर होंगे, खराब नहीं हो सकते इसके बाद।
विश्लेषण कर रहे थे शिवकांत शर्मा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है असम में, जहां गुवाहाटी में सैकड़ों लोग सामूहिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। सुनिए प्रदर्शन कर रहे लोगों का क्या कहना है।
मेरा नाम जीत खान है। तो मेरा पहला सवाल, हमारा असम का जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनको हमारा एक क्वेश्चन है। उनको हम लोग का, हमारा असम का जातीय नायक बोलता हूँ, लेकिन वो क्या कर दिया, हमारा असम का सब लोगों को इमोशनल करके वोट लेके ऐसा बोल दिया कि असम में जितना विदेशी लोग है यहाँ से हमारा गवर्नमेंट आते हम लोग भगा देंगे। लेकिन जब वो लोग सरकार में राजपा में बैठ गया, उसके बाद वो लोग धीरे 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 वो विदेशी जितना भी है वो आसाम में लेके तो आया है, वो तो बात है, लेकिन अभी बोल रहा है कि उनको भी सिटीजनशिप देगा। अगर उनको सिटीजनशिप देगा, हमारा जो स्थायी यहाँ का बासिंदा है, भूमिपुत्र है हम लोग, तो इसका क्या होगा? बोलता है कि बांग्लादेश से आदमी लेके आएगा। अरे भाई, हमारा आसाम में हम लोगों की जगह नहीं है, वो लोग काम कैसे जगह देंगे? जब तक वो क्या बातिल नहीं करेगा, तब तक हमारा ये डेमोक्रेसिक आंदोलन चलते रहेगा। वो सोच रहे कि हम पुलिस लगाएंगे, सीआरपी लगाएंगे, आर्मी लगाएंगे, कारपो देंगे, गोली चलाएंगे। कितना मरेगा भाई, कितना मरेगा? तुम्हारे पास कितना गोली चलाओ, हम लोग गोली खाने के लिए रेडी है।
बीइंग एज असम, इसमें यही कहना चाहता हूँ, हम लोग कैब नहीं मानेंगे। ये जब तक कैब असम से हटेगा नहीं, तब तक यही चलेगा, वो भी अहिंसा की तरफ से। अहिंसा से होगा ये कैब, ऐसे कैब जब तक नहीं उठा नहीं लेगा तब तक यही चलेगा।
क्या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसमें इनिशिएट करेगी? सबरन सुनवा सुनेंगे आप लोगों की बात?
क्यों नहीं सुनेगा? इतना सारा जनता यहाँ पे आ गया, अभी जो और लोगों को आने का बाकी है, क्यों नहीं सुनेगा? सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा उन लोगों को।
गुवाहाटी से आम लोगों की आवाज़ें आप तक पहुंचाई हमारे सहयोगी रवि प्रकाश ने। वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि उनकी सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है। असम से सटे मेघालय की राजधानी शिलांग में भी नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में लोग आज सड़कों पर उतरे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपना भारत दौरा, जिसमें उन्हें गुवाहाटी भी जाना था, रद्द कर दिया है। इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री और गृह मंत्री अपना भारत दौरा रद्द कर चुके हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
नागरिकता कानून में संशोधन के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में भीषण असंतोष और हिंसा। क्या धर्म के आधार पर नागरिकता तय करना धर्मनिरपेक्ष संविधान की भावना के अनुरूप है? ऐसा कानून पास करके मोदी सरकार क्या हासिल करना चाह रही है? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 14 दिसंबर को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर आज लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कल झारखंड में एक चुनावी रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया की बजाय अखबारों की सुर्खियों में रेप इन इंडिया ही नजर आता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की रिपोर्ट।
राहुल गांधी ने गुरुवार को झारखंड की चुनावी सभा में मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला था।
नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना, अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया।
लेकिन आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा।
जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो।
मामला यही नहीं थमा, जवाब में राहुल गांधी अपने बयान पर बने रहे और माफी मांगने से इनकार कर दिया।
मैं यहाँ स्पष्ट कह देता हूँ मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा, हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है।
मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं।
मामले पर विवाद बढ़ने के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव बलात्कार कांड के मामले पर भाजपा को घेरा तो भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ में हुए हालिया यौन हिंसा के मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस को जवाब दिया। कुल मिलाकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे। प्रियंका दुबे, पीबीसी दिल्ली।
अपने ज़माने में सलीम दुर्रानी भारत के सबसे अच्छे ऑलराउंडर माने जाते थे, लेकिन सलीम दुर्रानी इसलिए भी मशहूर थे क्योंकि वो दर्शकों की मांग पर छक्के लगाते थे। वर्ष 1973 में इंग्लैंड के भारत दौरे में जब उन्हें एक टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया तो पूरे शहर में पोस्टर लग गए, नो दुर्रानी नो टेस्ट। सलीम दुर्रानी के 85वें जन्मदिन पर रेहान फजल नज़र दौड़ा रहे हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
विवेचना। यूं तो 1971 में भारत की वेस्ट इंडीज पर विजय का नायक सुनील गावस्कर और दिलीप सरदेसाई को माना जाता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सलीम दुर्रानी की भी रही जब उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में दो लगातार गेंदों पर क्लाइव लॉयड और उस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर गैरी सोबर्स को आउट किया था। सुनील गावस्कर ने अपनी आत्मकथा सनी डेज में लिखा है कि सोबर्स को बोल्ड करते ही दुर्रानी जोर से उछले थे और फिर उछलते ही चले गए थे। सलीम दुर्रानी को 43 साल बाद भी वो गेंद अभी तक याद है।
उसकी पूरी क्रेडिट तो मैं दूंगा जैसी माँ को। हमारे कप्तान थे अजीत भाई वाडेकर। मैंने अजीत से पूछा कि क्या फील्डिंग चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पिच की जो रफ्तार होती है, बाउंस होता है, उसके हिसाब से गया। और मैं थोड़ा आई वॉज ए स्पिनर, लेकिन मैं थोड़ा क्विक था एयर में। और अजीत को भी ये बात पसंद आई। भीषण ने भी कहा कि सलीम अंकल को बोल दो, भीषण अंकल कहते बहुत प्यारा आदमी है। तो बस वो प्लानिंग करके किया और हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके मुताबिक हम कामयाब हो गए, उनको आउट कर दिया। सनी ने बोला कि अंकल आप तो इतने उछल रहे थे कि हम ये मैच आगे जाएगी, आप उछलते रहोगे। अब तो मुझे कह रहा था कि आप तो छोड़ो, क्या स्कीपिंग कर रहे हो।
इसी तरह हैदराबाद के खिलाफ एक रणजी मैच में उन्होंने नवाब पटौदी को कहकर आउट किया था। उस मैच में उनके साथ खेल रहे थे दुर्रानी के करीबी दोस्त और अपने जमाने के नामी मीडियम पेसर कैलाश गट्टानी।
हैदराबाद की अगेंस्ट हमारा मैच था और नवाब पटौदी बैटिंग कर रहे थे, राजस्थान वर्सेस हैदराबाद। नया बॉल ले लिया था हनुमान सिंह जी ने और मुझे बॉल फेंका कि कैलाश इस एंड से डालो, ये करो। मैंने डाला दूसरा ओवर, दूसरे एंड से किसी ने किया, सडनली वापिस टाइगर आ गए बैटिंग करने के लिए, तो सलीम आ गया। सलीम के पास में बॉल था, सलीम फील्डिंग कर रहे थे मिड ऑफ या मिड ऑन पे याद नहीं है मुझे। सडनली सलीम ने अपनी कैप निकाल के अंपायर को दे दी और कैलाश तू अहिया उभो रहे गुजराती है मुझे का। मैंने कहा सलीम भाई मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। बोले नहीं तू अभी जरा रेस्ट कर। मैं हनुमान सिंह जी के पास गया और मैंने तो बोला कि स्कीपर ये क्या है, मतलब आई एम बॉलिंग। तो उन्होंने बोला कैलाश डोंट इंटरफियर, इफ सलीम हैज टेकन द बॉल इन हिज हैंड जस्ट लीव हिम, लेट हिम बॉल। आप बिलीव करेंगे साहब कि नई बॉल से उसने तीन बॉल तो टाइगर को खिलाई और नई बॉल से लेग स्टंप से उसने टर्न करके ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। टाइगर वाज ऑलरेडी बैटिंग 50 और 60। मैच पलट गया साहब। ओवर खत्म हुआ तो मैं अपना वापस मिड ऑफ या मिड ऑन पे चले गया फील्डिंग करने के लिए, तो ही थ्रू द बॉल बैक टू मी और बोले लो बाकियों को आउट कर लो।
ये तो रही सलीम दुर्रानी की गेंदबाजी की बात, लेकिन उनको जाना जाता था उनकी आतिशी बल्लेबाजी की वजह से। वो शायद अकेले भारतीय बल्लेबाज थे जो दर्शकों की मांग पर उसी जगह छक्का लगाते थे जहां से ये मांग आ रही होती थी। एक टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले यजुवेंद्र सिंह एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
पैट पॉकॉक इंग्लैंड के बॉलर थे, तभी पैट पॉकॉक पार्टी में बहुत सॉर्ट ऑफ बात कर रहे थे कि कैसे ऑफ स्पिन करते हैं, ये करते हैं। और सलीम भाई ने उनको बोला कि देखो आपको ऑफ स्पिन आता ही नहीं है, जब आप टेस्ट मैच में मुझे बॉलिंग करेंगे मैं आपको सीधा ही स्टैंड में पहले ही बॉल मार दूंगा। पैट पॉकॉक उस वक्त तो नेचुरली सब लोग बहुत शॉक थे कि सलीम भाई क्या बोल रहे हैं। फिर हुआ टेस्ट मैच, बॉम्बे में था, पैट पॉकॉक बॉलिंग करने वाले थे तो उन्होंने माइक डेनिस को बोला, देखो ये इसने मुझे ऐसे चैलेंज मारा है कि अगर हम बॉलिंग करेंगे ऑफ स्टंप में या जहां भी करेंगे ये सिक्स मारेगा ईस्ट एंड में। तो माइक डेनिस बोला, देखो जो भी वो पार्टी में बोल रहे हैं वो तो दूसरी बात है, अभी आप टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, तो टेस्ट मैच में कौन ऐसा करेगा, कोई ऐसे नहीं करता है, तो डोंट वरी, आप क्या करना, आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करना और मिड विकेट भी रखेंगे आपके लिए। तो पैट पॉकॉक ने पहला बॉल सलीम दुरानी को बॉलिंग किया, तो उसने एक सीधा वो क्रॉस पैट मार के ईस्ट एंड में सिक्सर मार दिया उसको, और उसको बोला, मैंने बोला आपको कि आप ऑफ स्पिनर नहीं है, फिर वो 70 कुछ बनाए उन्होंने।
सलीम दुरानी की दरिया दिली के काफी किस्से मशहूर हैं। सुनील गावस्कर अपनी आत्मकथा सनी डेज में बताते हैं कि 1971 के वेस्टइंडीज दौरे से पहले उन्हें और सलीम दुरानी को श्रीलंका की टीम से मैच खेलने गुंटूर बुलाया गया।
हम मद्रास तक जहाज से गए, लेकिन वापसी में गुंटूर से मद्रास का सफर हमें ट्रेन से करना था। मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। सलीम ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और टीटी से कहकर अपने लिए एक कंबल और तकिए का इंतजाम कर लिया। ठंड की वजह से जाड़े की रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। सलीम भाई ने फौरन ये कहते हुए अपना कंबल मुझे दे दिया कि अभी तो मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, तुम तब तक इसे ओढ़े रहो। अगले दिन सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मैं तो कंबल से लिपटा हूँ और सलीम भाई एक बर्थ पर अपने को गर्म रखने के लिए अपने घुटने मोड़कर सिकुड़े हुए पड़े हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक माना हुआ टेस्ट क्रिकेटर किस तरह मुझ जैसे अनजान रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी के लिए अपना बिस्तर दे सकता है। उस दिन से मैं सलीम दुर्रानी को अंकल कहने लगा।
सलीम दुर्रानी मजाकिया प्रवृत्ति के शख्स हैं। हमेशा मजाक करना और ठहाके लगाकर हंसना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। लेकिन 1971 के वेस्टइंडीज दौरे में उनके रूममेट रहे दिलीप सरदेसाई ने उनकी ऐसी टांग खींची कि लोगों के पेट में हंसते हंसते बल पड़ गए।
जब 5-6 बजे का वक्त था तो नीचे से मेरे रूम में फोन आया, भाई हम सलीम दुरानी साहब से बात कर सकते हैं? यस आई एम स्पीकिंग। जैसे दुरानी साहब, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू इन इंडियन क्रिकेट एंड एवरीथिंग, वी वुड लाइक टू मीट यू पर्सनली इन माय चैनल, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कम अप। ही सेड नो नो, वी आर वेटिंग डाउनस्टेयर, हम वहाँ स्विमिंग पूल के पास आपका इंतजार करते हैं और हमको बहुत खुशी होगी जो हम आपके लिए कुछ चीजें लाए हैं, तो आप उसे कबूल कीजिए। फिर मैं नीचे गया अपने कपड़े चेंज करके, नीचे गया तो मुझे तो कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा किसका फोन आया था, तो मैंने जाके रिसेप्शन से पूछा, एक लड़की खड़ी थी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हैड समबडी कम टू कम फॉर मी हियर, शी सेड नो सर नो बडी। तो फिर मैं अपने कमरे में वापस चला गया। ऊपर 10 मिनट के बाद फिर फोन आया, तो कहा कि भाई वी आर वेटिंग फॉर यू दुरानी साहब। फिर दोबारा मैं नीचे गया, वो मेरे लिए टेप रिकॉर्डर लाए थे। तो उन दिनों में तो हम लोगों को जो अलाउंस मिलता था वो भी बहुत कम था, घर के वापसी पर भी हम लोग इतनी शॉपिंग नहीं कर पाते थे, पैसे नहीं थे। तो नीचे गया फिर देखा तो फिर कोई नहीं, फिर मैं स्विमिंग पूल पे गया तो वहाँ भी कोई नहीं। तो मैंने कहा ये क्या माजरा है। जब वापस मैं लिफ्ट के पास जा रहा था तो वहाँ एक खंभा था, वो पिलर होते हैं ना, उसके पीछे से आवाज आया, तो मैंने देखा कि दिलीप सरदेसाई वहाँ खड़ा था। तो उसने मेयर को इतना गुस्सा आया, फिर भागा स्विमिंग पूल से, मैंने जाके धक्का मारा उसको, पानी में फेंक दिया। टेप रिकॉर्डर तो क्या, छोटा कैमरा भी नहीं मिला।
टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद मशहूर फिल्म निर्देशक बाबूराम इशारा ने उन्हें अपनी फिल्म चरित्र के लिए बतौर हीरो साइन किया। उनकी हीरोइन थी मशहूर अभिनेत्री परवीन बाबी। युजवेंद्र सिंह याद करते हैं,
सलीम दुरानी बहुत मजे के आदमी थे और गुड लुकिंग, उनके लुक्स बहुत ही अच्छे थे, तो इसीलिए उनको अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट उनको एक्टिंग का भी रोल मिला, और वो रोल परवीन बाबी के साथ था, वो चरित्र फिल्म था। और बहुत अच्छा, अभी सलीम भाई को अभी एक्टिंग का भी मिल गया और मोर देन एक्टिंग उसको पैसा भी मिल गया। एवरी टाइम हम लोग बाहर जाते थे, सलीम भाई के पास पैसा नहीं रहता था, तो हमने बोला अभी तो ये यहाँ से एस्केप नहीं कर सकेंगे, अभी तो हमें मालूम है कितना मिला है उनको। और जब भी हम तो वो आए हमारे साथ खेलने के लिए हैदराबाद में, तो जब आए तो सब लोग ने बोला अभी सलीम भाई को लेट्स कैच हिम, अभी उनसे ट्रीट मांगेंगे। तो सलीम भाई बोले अच्छा, सबने बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है सलीम भाई, बोले सबने बोला आपको 18,000 मिला, 18,000 मिला है, कैसे आपके पास पैसा नहीं है? इसमें नहीं, हमने तो सब परवीन भाभी पे खर्चा कर दिया है। वैसे ही थे वो, बिंदास आदमी थे।
एक बार मशहूर क्रिकेट पत्रकार अयाज मेमन को इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक प्रीतिश नंदी ने सलीम दुर्रानी पर एक लेख लिखने के लिए कहा। उस समय दुर्रानी को क्रिकेट से रिटायर हुए 17 साल हो चुके थे।
ये बहुत जबरदस्त मेरे जर्नलिज्म करियर का एक वाकया है। मुझे खबर मिली उड़ती हुई कि सलीम दुर्रानी चौपाटी पर आराम होटल में ठहरे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं सोचा उनका पहले कार में हुआ करता था मुंबई के एरिया में खास, फिर उसके बाद मस्जिद बंदर में वो रहते थे। एक हरपन वाला इंसान भी थे, उनको कभी पता नहीं चलता था कहाँ ठहरे, कभी राजस्थान में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में। बहरहाल मैं जब आराम होटल गया तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि जिस कमरे में वो रहते हैं वो मेरे ख्याल से 8x5 का होगा, 5 या 6 का, उससे ज्यादा नहीं। और एक पलंग था जिसमें अगर सलीम दुर्रानी बैठ जाए, सो जाए और एक सूटकेस रख ले तो और किसी के लिए वहां जगह नहीं बनती थी। लेकिन मैंने वहां पर एक कैसे भी करके कुर्सी एक मंगवाई और लगाई आराम होटल के जो ओनर थे या मैनेजर थे, और बात की, उनसे इंटरव्यू किया। बहुत बुरे माली हाल में थे उस वक्त, उनके पास कुछ खास ऐसा था, और फिर इंटरव्यू तो मैंने किया लेकिन उनके ना चेहरे पे कोई बल था ना परेशानी नजर आ रही थी। जी हाँ, माली हालत काफी खराब थी लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। वो खुद मेरे ख्याल से एक ऐसा अपने आप को जिम्मेदार बता रहे थे कि जो कुछ मेरे साथ है वो मेरा खुद का करना है। और मैं बाहर निकलते वक्त मैनेजर से बात किया, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर डेली क्या है इस कमरे का, तो उन्होंने कहा कुछ 20 या 25 रुपए शायद बताया था उन दिनों। तो मैंने कहा कि कौन भरता है, तुम भरते? तो वो मुझसे कहा मेरी औकात है, मेरे में इतनी जरूरत है कि मैं सलीम दुर्रानी से पैसे मांगू। तो ये बताता है किस तरह से लोगों की मोहब्बत और चाह थी सलीम दुर्रानी के लिए।
गोविंद राजन जुरानी सोलका अबिदाली दिलीप साधेसायन विश्वनाथ दे मेक वेस्ट इंडीज बोलर्स लुक लाइक सेकंड रेटर्स व्हेन दोस फेलोस केम आउट हियर टू बैट।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी ने हिंदी रेडियो का प्रसारण आने वाले दिनों में बंद करने का निर्णय लिया है। पूरी जानकारी के साथ बीबीसी हिंदी के एडिटर मुकेश शर्मा।
देखिए, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में काफी विस्तार किया है। नई दिल्ली स्थित दफ्तर से 4 नई भारतीय भाषाओं में सेवा शुरू हुई। पिछले साल भारत में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की पहुंच 30 मिलियन से बढ़कर 50 मिलियन हो गई। इस दौरान बीबीसी के श्रोता बड़ी संख्या में शॉर्टवेव रेडियो से हटकर डिजिटल और टीवी की ओर चले गए, यानी बीबीसी की जो खबरें हैं उससे वो डिजिटल या टीवी के जरिए जुड़े रहे। दरअसल रेडियो श्रोताओं की लगातार गिरती संख्या को देखते हुए बीबीसी ने हिंदी में शॉर्टवेव रेडियो प्रसारण समाप्त करने का फैसला किया है। मगर डिजिटल और टीवी के साथ ही एफएम पार्टनर चैनलों के जरिए हम अपने दर्शकों और श्रोताओं से जुड़े रहेंगे। इन प्लेटफॉर्म्स पर नए लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, इसलिए बीबीसी इनमें निवेश जारी रखेगा। हमारा जो सुबह का कार्यक्रम है नमस्कार भारत, जो भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे प्रसारित होता है, उसका अंतिम प्रसारण शुक्रवार 27 दिसंबर को होगा। और जो हमारा ये दिन भर कार्यक्रम है शाम का 7:30 बजे का भारतीय समयानुसार, उसका अंतिम प्रसारण शुक्रवार 31 जनवरी को होगा। शॉर्टवेव प्रसारण बंद होने के बावजूद बीबीसी डिजिटल माध्यमों पर अपने कुछ नियमित कार्यक्रम डिजिटल ऑडियो के रूप में प्रसारित करता रहेगा, यानी विवेचना हो या दुनिया जहां जैसे जो कार्यक्रम हैं वो अभी भी आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर सुन सकेंगे। बीबीसी हिंदी की शॉर्टवेव रेडियो की ये जो पूरी ऐतिहासिक यात्रा रही है, इसे देखते हुए जनवरी में दिन भर कार्यक्रम में हम आर्काइव से निकाल कर खास प्रस्तुतियाँ लाएंगे। साथ ही श्रोताओं के साथ हमारा ये जो लंबा रिश्ता बना रहा उसके लिए हम विभिन्न प्रसारकों के जरिए इस पूरे रिश्ते को यादगार बनाने की कोशिश भी करेंगे।
ये थे बीबीसी हिंदी के एडिटर मुकेश शर्मा। वक्त नहीं बचा है मुख्य समाचारों का, दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार, सुबह 6:30 बजे। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।